अध्याय 13 उत्तरकालीन गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारतवर्ष में अनेक नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इनमें दो वंश विशेष उल्लेखनीय हैं, उत्तरकालीन गुप्त वंश और मोखरी वंश। ये दोनों राजवंश समकालीन थे और हर्ष के उदय के पूर्व उन्होंने उत्तरी भारत के इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त वंश, इस वंश के राजाओं के नाम के अंत में गुप्त लगा हुआ है, इसलिए यह वंश सुविधा के लिए गुप्त वंश कहा जाता है। पूर्वकालीन प्रसिद्ध गुप्त वंश से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इस वंश को उत्तरकालीन गुप्त वंश की संज्ञा दी गई है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इस वंश का उत्तरकालीन गुप्त वंश के से कोई रक्त संबंध था। संभवतः दोनों नितांत पृथक राजवंश थे। अवसद अभिलेख में इस वंश को केवल शतवंश कहा गया है। आदि निवास स्थान, उत्तरकालीन गुप्त वंश के आदि निवास स्थान के विषय में बड़ा मतभेद है। मालवा डॉक्टर राय चौधरी, डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी, डॉक्टर DC गांगुली आदि विद्वानों का मत है कि इस वंश का उदय मालवा में हुआ। इस मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, बाण अपने हर्षचरित में माधव गुप्त के पिता को मालवराज कहता है। दूसरा, देव वर्णांक अभिलेख से प्रकट होता है कि मगध में मोखरी नरेशों, सर्व वर्मा और अवंती वर्मा का राज्य था, अतः उसी समय वहां उत्तरकालीन गुप्तों का राज्य कैसे हो सकता था। तीसरा, यद्यपि महासेन गुप्त का पुत्र माधव गुप्त हर्ष का समकालीन था, तथापि वेनसांग ने मगध में उसके राज्य का उल्लेख नहीं किया है। यही नहीं, जब वेनसांग मगध पहुँचा तो उसने वहाँ पूर्व वर्मा को राज्य करते हुए पाया। चौथा, बराबर और नागार्जुनी गुहालेखों से प्रकट होता है कि प्रारंभिक मोखरी नरेशों का उदय गया जिले में हुआ था, अतः उसी समय वहाँ उत्तरकालीन गुप्त वंश का राज्य कैसे हो सकता था। खंडन, परंतु ये समस्त तर्क निर्बल हैं। पहला, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में उत्तरकालीन गुप्त वंश का आधिपत्य मगध में था, परंतु इस वंश का राजा दादमोदर गुप्त समकालीन मोखरी नरेश सर्व वर्मा द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। इस विनाश के पश्चात संभवतः दामोदर गुप्त का पुत्र मगध छोड़कर मालवा चला गया और उसने वहाँ एक नवीन राज्य स्थापित किया। इसी से बाण के हर्षचरित में वह मालवराज कहा गया है, परंतु इससे मालवा उत्तरकालीन गुप्तों का आदि निवास स्थान नहीं सिद्ध होता। दूसरा, देववर नारक अभिलेख में मोखरी नरेश सर्व वर्मा और अवंती वर्मा द्वारा मगध में दान में दिए गए एक ग्राम का उल्लेख है। इस ग्राम दान से गुप्त वंश का कोई संबंध नहीं था, अतः देववर नारक अभिलेख में इस वंश का उल्लेख नहीं हुआ है। परंतु देववर नारक अभिलेख से यह सिद्ध नहीं होता कि सर्ववर्मा के पूर्व उस ग्राम अथवा उस प्रदेश में गुप्त नरेश का अधिकार नहीं था। तीसरा, संभव है कि वेनसांग के समय उत्तरकालीन गुप्त वंश मगध छोड़कर मालवा चला गया हो, परंतु वेनसांग के पूर्व भी गुप्त वंश का मगध पर अधिकार न था, यह बात सिद्ध नहीं की जा सकती। चौथा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बराबर और नागार्जुनी गुहालेखों में उल्लिखित मुखरियों का कन्नौज के मुखरियों के साथ कोई संबंध था अथवा नहीं। यह संभव है कि बराबर एवं नागार्जुनी गुहालेखों में उल्लिखित मुखरियों के पतन के पश्चात उसी प्रदेश में उत्तरकालीन गुप्त वंश का उदय हुआ हो। इसके विरुद्ध फ्लिट, राखल दास बनर्जी, मजूमदार आदि विद्वानों ने मगध को गुप्त वंश का मूल स्थान माना है। यह मत अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है। पहला, गुप्त वंशी जीवित गुप्त प्रथम ने शीतल समुद्र तट और हिमालय प्रदेश में रहने वाले शत्रुओं से मोर्चा लिया था। इस वर्णन से अनुमान किया जा सकता है कि जीवित गुप्त मगध का राजा होगा, जहां से समुद्र तट और हिमालय दोनों निकस्त हैं। मालवा इस वर्णन के अनुकूल नहीं पड़ता। दूसरा, गुप्तवंशी महासेन गुप्त ने लोहित नदी के तट पर कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा से युद्ध किया था। इससे भी यह प्रकट होता है कि महासेन गुप्त कामरूप के समीपस्थ मगध का राजा था, मालवा का नहीं। मालवा और कामरूप के बीच स्वतंत्र मोखरी राज्य के रहते मालवा नरेश कामरूप में युद्ध करने ना जा सकता था। गुप्त मोखरी संघर्ष, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक मोखरियों की भांति परकालीन गुप्त भी पूर्वकालीन गुप्तों के सामंत थे। अवसद अभिलेख इस वंश के प्रथम राजा कृष्णगुप्त को एकमात्र नृप तथा तृतीय राजा जीवित गुप्त प्रथम को क्षितिश चूड़ामणि कहा गया है। इन शब्दों से यही सिद्ध होता है कि प्रारंभिक राजा सामंत शासक थे। ऐसी स्थिति उत्तरकालीन गुप्तों के समकालीन मुखरियों की थी। उनके भी प्रारंभिक तीन राजा हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा सामंत शासक थे, क्योंकि उनमें से किसी के लिए भी महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। मोखरी वंश भी पूर्वकालीन गुप्तों के अधीन था। इन दोनों समकालीन सामंत वंशों उत्तरकालीन गुप्तों और मोखरियों में प्रारंभ में अच्छे संबंध थे। आदित्य वर्मा मोखरी ने उत्तरकालीन गुप्त वंशीया हर्ष गुप्ता के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार ईश्वर वर्मा मोखरी के परकालीन गुप्त वंशीया उपगुप्ता के साथ विवाह किया था। यही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सामंत वंशों मोखरियों और उत्तरकालीन गुप्तों ने अपने स्वामी गुप्त वंश के साम्राज्य की रक्षा के लिए उसके शत्रुओं से पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से युद्ध किए थे। अवसद अभिलेख से प्रकट होता है कि जीवित गुप्त प्रथम ने समुद्र तटी गौणों से युद्ध किया था। हरहा अभिलेख से प्रकट होता है कि ईशान वर्मा मोखरी ने भी इन्हीं गौणों से युद्ध किया था। ये दोनों सामंत शासक समकालीन थे, अतः अनुमान किया जा सकता है कि इनकी सैनिक कार्यवाही गुप्त साम्राज्य की रक्षा के हेतु सम्मिलित रूप से की गई थी। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य निर्बल होने लगा, वैसे ही वैसे ये दोनों सामंत वंश भी स्वतंत्रता के स्वप्न देखने लगे। 554 ईस्वी के हरहा अभिलेख से प्रकट होता है कि स्थिति के आसपास मोखरी वंश के चौथे राजा ईशान वर्मा का उदय हुआ। असीरगढ़ राजमुद्रा में इस राजा के लिए महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इससे अनुमान होता है कि इस राजा ने छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त वंश के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उत्तरकालीन गुप्त वंश ने मोखरियों की बढ़ती हुई शक्ति को अपने लिए भी खतरा समझा। इस वंश के चौथे राजा कुमारगुप्त ने भी स्वतः इसी समय अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। यह चौथे मोखरी नरेश ईशान वर्मा का समकालीन था। इस परिस्थिति में दोनों में युद्ध हुआ। इस प्रकार गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में प्रभुसत्ता स्थापित करने के प्रयत्न में मोखरियों और उत्तरकालीन गुप्तों की शत्रुता प्रारंभ हुई। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुप्तों के पतन के पश्चात प्रारंभ में कुछ समय तक मोखरी उत्तरकालीन गुप्तों के अधीन रहे अथवा उत्तरकालीन गुप्त मोखरियों के अधीन रहे। ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। काल निर्धारण कतिपय साक्ष्यों की सहायता से उत्तरकालीन गुप्तों का काल निर्धारण किया जा सकता है। पहला, मोखरी नरेश ईशान वर्मा की 554 ईस्वी की तिथि हरहा अभिलेख में ज्ञात होती है। यह नरेश उत्तरकालीन गुप्त नरेश कुमार गुप्त का समकालीन था। दूसरा, अवजत अभिलेख से ज्ञात होता है कि उत्तरकालीन गुप्त नरेश महासेन गुप्त कामरूप नरेश स्थित वर्मा का समकालीन था। सुस्थित वर्मा का पुत्र भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था। अतः सुस्थित वर्मा और महासेन गुप्त दोनों को छठी शताब्दी के अंतिम चरण में रखा जा सकता है। तीसरा, बाण के हर्षचरित विदित होता है कि महासेन गुप्त का पुत्र माधव गुप्त हर्ष का समकालीन था। इससे भी महासेन गुप्त छठी शताब्दी के अंतिम चरण में रखा जा सकता है। चौथा, गुप्त नरेश आदित्य सेन की 672 ईस्वी की तिथि शाहपुर अभिलेख से मिलती है। पांचवा, जीवित गुप्त द्वितीय अंतिम उत्तरकालीन गुप्त नरेश था। इसे कन्नौज नरेश यशोवर्मा ने पराजित किया था। यशोवर्मा 8वीं शताब्दी में हुआ, अतः इसी शताब्दी में उत्तरकालीन गुप्त वंश का अंत हुआ। वंशावली, उत्तरकालीन गुप्तों की वंशावली का ज्ञान प्रमुखतः हमें दो अभिलेखों से होता है। पहला, अवजत अभिलेख। इससे इस वंश के कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। दूसरा, देववर नारक अभिलेख। इससे इस वंश के अंतिम तीन राजाओं देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय के नाम ज्ञात होते हैं। कृष्णगुप्त या उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक था। इसका उल्लेख केवल अवशत अभिलेख में हुआ है। इस अभिलेख में इसे केवल नृप कहा गया है। इससे अनुमान होता है कि यह सामंत शासक था या गुप्त वंश के अधीन रहा होगा। यद्यपि अवशत अभिलेख में इसके युद्धों और विजयों का वर्णन है, तथापि उसके किसी भी शत्रु का नाम नहीं दिया गया है। डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि उसके शत्रुओं में एक शत्रु मालवा का यशोधर्मा भी था। हर्षगुप्त या कृष्णगुप्त का पुत्र था। संभवतः मोखरी नरेश आदित्य वर्मा की रानी हर्षगुप्ता इसकी बहन थी। इससे प्रकट होता है कि इस समय तक उत्तरकालीन गुप्तों और मोखरियों की मित्रता थी। जीवित गुप्त प्रथम या हर्षगुप्त का पुत्र था। यह पराक्रमी राजा प्रतीत होता है। अपशत अभिलेख में इसके अनेक सफल युद्धों का वर्णन है। संभवतः ये युद्ध उसने अपने स्वामी वंश गुप्त वंश के लिए किए होंगे। इस अभिलेख में इसे क्षितिज चूड़ामणि कहा गया है, जिससे उसका सामंत पद सिद्ध होता है। अपशत अभिलेख में कहा गया है कि उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया, उसने अपने शत्रुओं में इतना घोर प्रताप ज्वर उत्पन्न किया और शीतल समुद्र तटों और हिमालय प्रदेश में रहते हुए भी वे उसे शांत नहीं कर सके। समुद्र तटी शत्रु गौण हो सकते हैं। हरहा अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त तटी गौणों के विरुद्ध मोखरी नरेश ईसार वर्मा ने भी युद्ध किया था। संभव है कि इन दोनों सामंत राजाओं ने अपने अधिपति गुप्त नरेश के लिए सम्मिलित रूप से बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध युद्ध किया हो। हिमालय प्रदेश से लिच्छवी राज नेपाल का अर्थ हो सकता है जीवित गुप्त प्रथम या फलता है। मालवा के राजा यशोधर्मा के पूर्वी भारत के अभियान के पश्चात ही मिली होंगी, अतः इनकी तिथि 532 ईस्वी के पश्चात ही रखी जानी चाहिए। कुमारगुप्त जीवित गुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त सिंहासनासीन हुआ या एक प्रतापी राजा सिद्ध हुआ या कन्नौज के मोखरी नरेश ईसार वर्मा का समकालीन था। पहले कहा जा चुका है कि ईसार वर्मा ने गुप्त वंश के विरुद्ध अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपने प्रभु सत्ता की सूचना देते हुए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसके इस उत्कर्ष से उत्तरकालीन गुप्त वंश के लिए भी संकट उत्पन्न हो गया होगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों वंशों की पुरानी मित्रता समाप्त हो गई और उनमें एक दीर्घकालीन शत्रुता का सूत्रपात हुआ। अपशत अभिलेख में का कथन है कि कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा के सेना रूपी समुद्र को मंदर पर्वत की भांति मथ डाला। इसी अभिलेख में कहा गया है कि कुमारगुप्त प्रयाग में अग्नि में प्रविष्ट हुआ। इससे यह प्रकट होता है कि इस युद्ध में यद्यपि कुमारगुप्त की विजय हुई, तथापि वह युद्ध भूमि में ही मारा गया अथवा विजय प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात कुमारगुप्त की स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई। जो भी हो, यह महत्वपूर्ण है कि उसका शरीर प्रयाग में भस्म हुआ। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को पराजित कर उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया था। हरहा अभिलेख से ईशान वर्मा की तिथि 554 ईस्वी प्राप्त होती है। इसी के आसपास कुमारगुप्त भी रखा जा सकता है। दामोदर गुप्त कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र दामोदर गुप्त सिंहासनासीन हुआ। उसका समकालीन मोखरी नरेश सर्व वर्मा था। अपशत अभिलेख में इन दोनों के युद्ध का भी वर्णन है। इस वर्णन से निम्नलिखित तथ्य सम्मुख आते हैं। पहला, मोखरी नरेश की गजसेना ने हुड़ों को पराजित किया था। दूसरा, उस मोखरी सेना को दामोदर गुप्त ने छिन्न भिन्न कर दिया। तीसरा, वह स्वयं युद्ध में सम्मूर्छित हो गया। चौथा, उसने सुरवधुओं के करकमलों के सुखद स्पर्श से चेतना प्राप्त की। डॉक्टर सरकार का मत है कि यहाँ मोखरी नरेश का अर्थ ईशान वर्मा से है। ईशान वर्मा ने गुप्त नरेश बालादित्य की ओर से हुड़ों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया था। ऐसी पराक्रमी मोखरी सेना को दामोदर गुप्त ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। श्री क्षेत्र चट्टोपाध्याय का यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध में दामोदर गुप्त विजयी हुआ, परंतु युद्ध भूमि में उसे मूर्छा आ गई और थोड़े समय पश्चात उसे पुनः चेतना आ गई। डॉक्टर सरकार ने संस्कृत साहित्य से इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया है कि वास्तव में युद्ध भूमि में दामोदर गुप्त मारा गया और विजय मोखरी नरेश सर्व वर्मा की हुई। बात यह है कि अपशत अभिलेख उत्तरकालीन गुप्त वंश का है, अतः इसने अपने राजा पराजय और मृत्यु की घटना को दबाने का प्रयत्न किया है, परंतु इतना स्पष्ट है कि सुरवधुओं का साहचर इहलोक में नहीं वरन परलोक में भी संभव था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध में दामोदर गुप्त मारा गया, यद्यपि मोखरी नरेश की सेना की भी बड़ी क्षति हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विजय के परिणाम स्वरूप सरोवर्मा ने उत्तरकालीन गुप्त के मगध राज्य का अधिकांश अपने अधिकार में कर लिया था। इस कथन की पुष्टि देववर्णार्क अभिलेख से होती है। इस प्रकार सर्व वर्मा ने अपने पिता ईशान वर्मा की पराजय का प्रतिशोध किया। अपशत अभिलेख दामोदर गुप्त के दोनों का उल्लेख करता है। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान दिए थे और आर्थिक सहायता देकर ब्राह्मण कन्याओं के विवाह कराए थे। महासेन गुप्त दामोदर गुप्त के पश्चात उसका पुत्र महासेन गुप्त राजा हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता दामोदर गुप्त की पराजय और मृत्यु के पश्चात महासेन गुप्त के हाथ से मगध का राज्य जाता रहा और उसने भागकर मालवा में शरण ली तथा वहां अपने राज्य की स्थापना की। बाण के हर्ष चरित्र में उसे मालवराज कहा गया है। परंतु महासेन गुप्त के संकट का अंत न हुआ। कदाचित कुछ दिनों के पश्चात उसके हाथों से मालवा भी जाता रहा। वहाँ देवगुप्त नामक एक अन्य राजा का उदय हुआ, यह भी उत्तरकालीन गुप्त वंशी प्रतीत होता है। संभव है कि यह महासेन गुप्त का भाई अथवा संबंधी हो और इसने महासेन गुप्त के विरुद्ध विद्रोह करके मालवा पर अधिकार कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि महासेन गुप्त ने पुनः मगध पर अधिकार कर लिया। अब्जद अभिलेख का कथन है कि इसने लोहित नदी के तट पर सुस्थित वर्मा को पराजित किया था। फिल्ट राधा कुमुद मुखर्जी और हेमचंद राय चौधरी आदि विद्वानों का मत था कि यह सुस्थित वर्मा कन्नौज का मोखरी नरेश था। उनके इस मत के दो प्रमुख आधार थे। प्रथमतः उत्तरकालीन गुप्त राजाओं की मोखरी नरेशों से शत्रुता थी। कुमार गुप्त ने मोखरी नरेशों ईशान वर्मा से युद्ध किया था। इस प्रकार दामोदर गुप्त ने मोखरी नरेश्वर वर्मा से युद्ध किया था। अतः जब महासेन गुप्त ने सुस्थित वर्मा से युद्ध किया तो यह अनुमान करना नितांत स्वाभाविक प्रतीत हुआ कि सुस्थित वर्मा मोखरी था। द्वितीय मोखरी नरेशों के नामों के अंत में वर्मा लगा हुआ है। सुस्थित वर्मा का नाम भी वर्मा से अंत होता है, अथवा भी मोखरी प्रतीत हुआ। परंतु इस मत के विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गईं। पहला, यदि सुस्थित वर्मा मोखरी नरेश था तो उसका नाम मोखरी वंशावली में आना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। दूसरा, मोखरी नरेशों की मुद्राओं के साथ सुस्थित वर्मा की मुद्राएं नहीं मिलती। तीसरा, यदि सुस्थित वर्मा कन्नौज का मोखरी नरेश था तो उसके साथ उत्तरकालीन गुप्त नरेश महासेन गुप्त का युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कैसे हुआ। चौथा, देवर नारक अभिलेख स्वर वर्मा का उत्तराधिकारी अवंती वर्मा को बताता है, सुस्थित वर्मा को नहीं। पांचवा, निधनपुर ताम्रपत्रों में सुस्थित वर्मा को कामरूप नरेश भास्कर वर्मा का पिता बताया गया है। इन आधारों पर यह सिद्ध हो जाता है कि सुस्थित वर्मा कन्नौज का मुखरी राज्य न था वरन कामरूप का राजा था। इसे महासेन गुप्त ने हराया था। यदि महासेन गुप्त मालवा का राजा होता तो वह कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा से ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर युद्ध कैसे करता। इससे यही संकेत मिलता है कि महासेन गुप्त ने पुनः मगध पर अधिकार कर लिया था। अभिलेखों से प्रकट होता है कि थानेश्वर के वर्धन वंश के महाराजा आदित्य वर्धन की रानी का नाम महासेन गुप्ता था। संभवतः यह महासेन गुप्त की बहन थी। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तरकालीन गुप्त वंश और वर्धन वंश की मित्रता थी। यही कारण है कि बाण के अनुसार महासेन गुप्त के पुत्र माधव गुप्त और कुमार गुप्त थानेश्वर राज्य में रहते थे। इस प्रकार अनेक आपत्तियों का सामना करते हुए महासेन गुप्त ने अपने पैतृक मगध राज्य की रक्षा की। अवशत अभिलेख में उसकी वीरता का उल्लेख है। माधव गुप्त महासेन गुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र माधव गुप्त राजा हुआ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह थानेश्वर की राज्यसभा में रहता था। यह हर्ष का समकालीन था। अवजद अभिलेख में माधव गुप्त के अनेक गुणों की प्रशंसा की गई है। उसने अपने शत्रुओं का विनाश किया था। इसे विक्रमेक रसः कहा गया है, परंतु अभिलेख इसके शत्रुओं के नाम नहीं बताता। कदाचित इनमें कामरूप नरेश भी रहा होगा। पुनश्च यह सौजन्य का निधान लक्ष्मी सत्य और सरस्वती का कुलगिरी तथा धर्म का सेतु था। अवजद अभिलेख कहता है कि जब माधव गुप्त ने अपने सभी शत्रुओं का संहार किया और यह समझा कि अब मेरे लिए कुछ भी करने का शेष नहीं है तो उसने हर्ष से मित्रता करने का प्रस्ताव किया था। चीनी साक्ष्यों में हर्ष को मगध का राजा बताया गया है, माधव गुप्त को नहीं। इसका विशेष कारण यही प्रतीत होता है कि वर्धन वंश उत्तरकालीन गुप्त वंश की मित्रता थी। संभव है कि प्रभाकर वर्धन अथवा हर्ष ने माधव गुप्त को मगध का राज्य संभालने में सहायता दी हो। माधव गुप्त हर्ष के संबंधी और मित्र की भांति मगध में राज्य कर रहा था। इसी से चीनी साक्ष्यों ने हर्ष को ही मगध का राजा मान लिया था। आदित्य सेन या माधव गुप्त का पुत्र था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात जब उत्तरी भारत में कोई एक छत्र राज्य न रहा तो उसने अपने भुजबल से पूर्वी भारत में सबसे विशाल और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। इसके शासन की एकमात्र तिथि 66 हर्ष संवत शाहपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदर पर्वत पर दो अभिलेख मिले हैं। इनमें आदित्य सेन को परम महारक महाराजा धीराज कहा गया है। प्रसिद्ध अफजद अभिलेख भी इसी नरेश ने उत्तीर्ण कराया था। इसमें कहा गया है कि इसने शत्रुओं का नाश किया था। इसने अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसकी कृति समुद्र पार चली गई थी। वैद्यनाथ मंदिर अभिलेख भी आदित्य सेन को समुद्र प्रयत्न वसुंधरा का शासक बताता है। यही लेख उसके अश्वमेघ का भी उल्लेख करता है। इन कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि आदित्य सेन अपने वंश का सबसे अधिक पराक्रमी राजा था और उसने अनेक शत्रुओं को पराजित किया था। अभाग्यवश हमें उसके शत्रुओं के नाम ज्ञात नहीं है। उसके राज्य में मगध, अंग और बंगाल के प्रदेश सम्मिलित थे। अवजद अभिलेख में आदित्य सेन की माता का नाम महादेव देवी श्रीमती दिया हुआ है। इसने एक मठ का निर्माण कराया था। इसी अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम श्री कोण देवी बताया गया है। श्री कोण देवी ने एक सर का निर्माण कराया था जिससे जनता को पीने के लिए पानी मिल सके। आदित्य सेन वैष्णो धर्मावलंबी था। देवर नारक अभिलेख में इसे परम भागवत बताया गया है। बैद्यनाथ मंदिर अभिलेख से प्रकट होता है कि इसने विष्णु के वराह रूप की मूर्ति बनवाई थी। अब्जद अभिलेख से विदित होता है कि इसने विष्णु का एक मंदिर बनवाया था। देवगुप्त देवबर नारक अभिलेख से ज्ञात होता है कि आदित्य सेन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र देवगुप्त राजा हुआ। इसे परम भारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। केंदुर ताम्रपत्र के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने देवगुप्त को पराजित किया था। इस मत का प्रमुख आधार यह है कि केंदुर ताम्रपत्र में विनय आदित्य को सकलोत्तार पथनाथ कहा गया है। देवबर नारक अभिलेख देवगुप्त को महाश्वर बताता है। विष्णुगुप्त देवबर नारक अभिलेख से विदित होता है कि यह देवगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने भी परम महारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह भी अपने पिता की भांति शव था। जीवित गुप्त द्वितीय या विष्णुगुप्त का पुत्र था। देवबर नारक का प्रसिद्ध अभिलेख इसी नरेश ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख द्वारा जीवित गुप्त द्वितीय ने उस अग्रहार दान की पुनः पुष्टि की थी जिसे गुप्त नरेश और मोखरी सर्ववर्मा ने दिया था। यह अभिलेख जीवित गुप्त को परमहारक महाराज धीराज परमेश्वर कहता है। वाकपति राज द्वारा लिखित गौडवहो नामक काव्य का कथन है कि कानकुब्ज नरेश नशुवर्मा मगधनाथ को पराजित किया था। अनेक विद्वान इस मगधनाथ को जीवित गुप्त द्वितीय मानते हैं। यदि यह समीकरण सत्य है तो उत्तरकालीन गुप्त राज्य का पतन 8वीं शताब्दी में हो गया था।